सुख वृद्धि के लिए और भजन की पद्धति बतलाने के लिए मैंने इस ग्रंथ को प्रकाश किया। ये लोग मत समझे कि ये मेरा लिखा हुआ है। जैसे बृहद भगवतामृत को, जैव धर्म को लोग कहते हैं ये उपाख्यान और उपन्यास है, इसलिए इसको भी उपन्यास मत समझ लो जो उनके नाम पर हमने ये किया। इसलिए कहते हैं कि इसको प्राप्त करेंगे एवं उनके निकट से इस संबंध में कोई वितर्क मत करेंगे। पहले कह दिया है ये विश्वास के साथ में पढ़ो, इसलिए जिसको विश्वास है मत पढ़े, उनके लिए सौगंध है। अजिन को महाप्रभु जी के इन तत्वों में विश्वास है, इस ग्रंथ को पढ़ करके वैसा ही भजन करें। साधन भजन की पद्धतियां बहुत प्रकार की हैं, किंतु नमाश्रित भजन करने के लिए एक ही प्रकार की पद्धति है जो मैं दे रहा हूं, दूसरी कोई पद्धति नहीं। ध्यानचंद्र जी से लेकर के बक्रेश्वर पंडित ध्यानचंद्र जी और हरिदास ठाकुर जी जिन पद्धति को ग्रहण किया है उसी का मैंने इसमें दिया है। इसलिए इस सबको पढ़ करके और उसी भजन पद्धति को, नाम पद्धति को आप लोग आश्रय करेंगे। यही यदि ऐसा कर सके तो हरिदास ठाकुर जी के और भक्ति मनोज ठाकुर ये युग दोनों के चरण में पुष्पांजलि होगी। आज रात कुछ अधिक हो गई, आप लोगों से मैंने नहीं सुना, अगले दिन देखेंगे आप लोग कुछ बोलेंगे। और कल तो विश्वरूप खौग है, हर कल ही है ना। विश्वरूप जी कौन थे, उनकी भजन प्रणाली कैसे थी, महाप्रभु जी से उनका क्या संबंध था, और उसी दिन एक महापुरुष का जन्म भी है, वह है हाँ जिन्होंने हमारे गुरु थोड़ा ही उल्लेख है, अधिक नहीं, चैतन्य भागवत इत्यादि ग्रंथों में। इसके संबंध में मैं भी कुछ बतला चुका हूँ और जो जो प्राय बातें हैं सब आई गई हैं, इसलिए हम लोग चैतन्य चैतामृत में आगे बढ़े। बहुत ही सरल सीधे, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के ये बालक थे। माता पिता का आदेश सुनते थे और अद्वैताचार्य जी के की पाठशाला में ये रहते थे, भक्ति पर समस्त प्रकार की व्याख्याएं करते थे और श्रवण करते थे। संन्यास लेकर के फिर चले गए, बस यहीं तक मिलता है और बाकी सब तत्व हम लोगों ने बतलाया है। अब चलिए हम लोग चलें। प्रेम रस निज जास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। यही दो हेतु के कारण वो इस जगत में आते हैं। और ये भी बतलाया, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे जेई करे मोरे करे शुद्ध भक्ति। ये प्रभुपाद जी ने शुद्धा भक्ति के लिए जो लिखा है उसको हमने पढ़ करके सुनाया। शुद्धा भक्ति माने प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति माने रागानुगा भक्ति। अपना के बड़ो माने हमारे समहीन, अपना के अपने को जसोदा मैया नंद बाबा बड़ा समझते हैं और कृष्ण को बहुत छोटा शिशु समझते हैं, जैसे गुरु जी थे और गुरु वर्ग उनके हैं, और हमारे समहीन और मुझे या तो सखा जैसा बराबर या माता पिता जैसा हीन, अथवा फिर वो गोपियों के समान अपने बराबर समझती हैं, कुछ अपने बराबर और कुछ अपना समझती हैं, मम भाव लेकर और कोई तदीय भाव, ये दोनों भावों से भजन करती हैं, सेवा करती हैं। यदि ऐसा कोई करता है उस भाव से ही मैं उसके प्रसन्न अधीन होता हूँ, और बाकी लोगों को जो जैसा भजन करता है उसके अनुरूप फल देते हैं। और इन दोनों तीनों का ऋण नहीं चुका पाते, विशेष करके मधुर भाव का, इसलिए उनके अधीन हो जाते हैं। मई भक्ति ही भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या जदासिद मत स्नेहो भवती नाम मदात्म। कैसे अधीन हो जाते हैं इसी को बतला रहे हैं श्रीमद् भागवत के दसवें स्कंद के 81 अध्याय में ये बतला रहे हैं। सूर्य ग्रहण के समय में गोपियां नंद बाबा सब लोग वहाँ पर सूर्य ग्रहण में गए कुरुक्षेत्र में। मिलने के बाद में ये बतला रहे हैं गोपियां इनको देख करके रोने लगीं तो कृष्ण ने उनको सांत्वना दी और मिलने में देर नहीं है। मई भक्ति ही भूतानाम अमृतवाय कल्पते भूतानाम माने जीवानाम जितने भी जीव हैं प्राणी हैं यदि वे मेरे प्रति भक्ति करते हैं। कौन भक्ति करते हैं कौन सी भक्ति शुद्धा भक्ति करते हैं अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अद्यनाप्रतम अनुकुलन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति ऐसी भक्ति करते हैं अन्नाभिलाष रहित ज्ञान कर्म से अनावृत अनुकूल्यमयी प्रतिकूलता रही नैरंतर्य मई भक्ति को करते हैं। तो ये जीवों के लिए अमृतवाय कल्पते अमृत जीवों के लिए अमृतवाय अमृतत्व को देने वाली है अमृत मृत फिर अमृत मृत माने मरना और अमृत माने नहीं मरना। तो जब जन्म होगा तो मरण होगा अब इसलिए अमृत माने होगा जब जीवन और मरण से भी ऊपर उठा दे यह है अमृत अर्थात पुनः जन्म नहीं होना अर्थात मुक्ति। मुक्ति भी बहुत प्रकार की जीवन मरण से अतीत होना सांसारिक आसक्ति को छोड़ देना ये यथार्थ मुक्ति है किंतु ये गौण भाव मुख्य क्या विष्णुंग लाभ मुक्ति विष्णु के चरण कमलों की सेवा की प्राप्ति ही मुक्ति है और उसका ये गौण लक्षण है क्या अन्यासी जरण मरण से भी अतीत हो जाता है। भगवान की चरण कमलों की सेवा भी बहुत प्रकार की है उसमें मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राण ये चरण कमल की सेवा है। ये जो सेवा है ये अमृतवाय कल्पते अमरता को अमरत्व को प्रदान करती है मरना नहीं अब जन्म नहीं होना किंतु दिष्ट्या बड़े सौभाग्य से किसके सौभाग्य से तुम लोगों के सौभाग्य से नहीं मेरे सौभाग्य से कृष्ण कहते हैं जी मेरे सौभाग्य से जद आशित मत स्नेह हो हमारे प्रति तुम लोगों का स्नेह है ये तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम हमको स्नेह करती हो। यदि कृष्ण अपने सखा कौन गोप कुमार के लिए ऐसा कर सकते हैं आज मैं धन्य हो गया तुमने हमारे ऊपर में बड़ी कृपा की बहुत दिनों से मैं तुम्हें तुम्हारे लिए तड़प रहा था तुम आ गए ये तुम्हारी हमारे ऊपर में विशेष कृपा है। तो इन लोगों के लिए इसलिए यहाँ पर ये कर रहे हैं सौभाग्यवश तुम लोगों का हमारे प्रति जो स्नेह है क्यों कृष्ण लोलुप है ना रस के लोलुप हैं स्नेह के लिए लोलुप हैं उनको जो प्यार कर देता है तब उसी में अपने को कृतार्थ मानते हैं विशेष करके ये तीन प्रकार के प्रेम इसलिए कहते हैं तुम लोगों का हमारे प्रति जो स्नेह है प्रेम के ऊपर में स्नेह प्रेम स्नेह इत्यादि वहाँ पर स्नेह कहा गया है किंतु स्नेह के रूप में वहाँ पर और आगे बढ़ जाओ राग अनुराग भाव महाभाव इत्यादि सब वो जो तुम्हारा हमारे प्रति है भौतिक नाम मदापना वह क्या है तुम्हारे लिए मेरी प्राप्ति का कारण है, तुम मुझे प्राप्त कर लिया, और जो मिलने का है वो अब थोड़े दिन में जरूर हो जाए, क्योंकि तुम्हारा हमारे प्रति में ऐसा भाव है, प्रेम है, स्नेह है। इसलिए मदापन, मदापन माने के मेरी प्राप्ति कराने वाला, हमसे मिलन कराने वाला है। माता मोरे पुत्र भावे कर्ण बंधन, माता मोरे पुत्र भावे कर्ण बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालो नपाल। माता अत्यंत स्नेह से ऐश्वर्य भाव रहित पुत्र भाव से मेरा बंधन करती है, मुझे बांधती है, और अतिहीन ज्ञाने कहीं मट्टी खाएगा, कहीं अभी भाग जाएगा जंगल में, और ये चोरी सीखता है, इसलिए इसको सुधारना है, इसलिए उसे बांधती हैं और तार्जन भी करती हैं और लाल पाल भी करती हैं। ऐसा बांधने के बाद में गोदी में उठा करके चुंबन करती है, लाल पालन करती है। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण, और सखा शुद्ध सख्य में एक मिश्रित सख्य होता है, जो रामचंद्र जी के यहाँ और द्वारकापुरी में है, वो मिश्र सख्य है। मिश्र सख्य कहते हैं जहाँ पर ऐश्वर्य के साथ में मिला हुआ मैं उनका दास हूँ, और ये प्रभु हैं, बड़े ऐश्वर्यवान हैं, ये बहुत बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, इस भाव के लिए रहते हुए जो सख्य भाव होता है। जैसे सुग्रीव जी हैं, वो निषाद जी हैं, निषाद राज जी हैं, भाइयों में शत्रुघ्न भरत और लक्ष्मण जी हैं, ये सब सखा हैं, विभीषण जी उनके सखा हैं, किंतु ये मिश्र सखा हैं। अर्जुन दास्य लेकर के मिश्रित सख्य है, ये मिश्र सख्य है। युधिष्ठिर भीम ये सभी किंतु इनसे जो शुद्ध दास सख्य है वो ब्रज में केवल है। शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण, सखा सखा लोग कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं, तुम ही कौन बड़ो लोग, तुम ही आमिशन, तुम कौन से बड़े आदमी हो, यहां तक कि अपने से बड़ा भी नहीं मानते हैं, सम कैटेगरी के मानते हैं, भगवान की तो बहुत गौर की बात रहे, भगवान की तो बहुत, भगवान तो मानते ही नहीं, साधारण सख्य भाव से खेल में कृष्ण हार जाते हैं और झपट कर इनके कंधे में चढ़ जाते हैं, यदि नहीं कृष्ण चढ़ाते तो जबरदस्ती उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं, या और कहीं नहीं है, बैकुंठ आदि में भी ये नहीं है। देवकी के वात्सल्य में और कौशल्या जी के वात्सल्य में, अदिति के वात्सल्य में ये सब चीजें नहीं, बैकुंठ आदित्य नहीं, ये सब लीला प्रचार। तो इसका मतलब नहीं है कि ब्रज में भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, वह है कि नहीं है, सख भाव वात्सल्य भाव कांता भाव
तक नहीं है, गोलक के परे,
गोलक के ऊपर में। प्रिया यदि मान करी करे भर्षण, वेद स्तुति हैते हरे से ही मोर मन। प्रिया यदि मान करती है और भर्षण करती है, भर्षणा करती है, तो वेद स्तुति हैते हरे मोर, तो वेद स्तुति से भी मेरा मन चित्त नहीं वशीभूत होता, किंतु इनके ऐसे सुनने के लिए मैं ललायित रहता हूँ। ऐसे मान और ऐसे भर्षण पूर्वक वाक्यों के द्वारा मैं वशीभूत हो जाता हूँ, सुनने के लिए ललायित रहता हूँ। यही शुद्धा भक्ति लैया करिमु अवतार, इसका मतलब क्या हुआ, यही शुद्धा भक्ति लैया कहाँ से लेकर, कहीं से आएंगे तो ये कहाँ विचार हो रहा है, तो लैया साथ में लाएंगे। तो ये किस में झोली में लाएंगे ना, कोई पात्र होगा या घड़े में भर करके लाएंगे, जहाँ है जिस पात्र में है वो पात्र क्या है, वो सखा माता पिता और उनको साथ लेकर के जिनमें ये भाव है उसको लेकर के मैं और परित होता हूँ। करिमु अवतार, शुद्ध भक्ति लैया मैंने शुद्ध भक्तों को लेकर के जिनमें ये शुद्ध भक्ति है मैं इस जगत में अवतरित हूँ। करीब विविध विविध अद्भुत विहार, अवतार करने के बाद में मैं क्या करूंगा, विविध विध अद्भुत विहार करूंगा। अद्भुत माने क्या, अद्भुत अलौकिक, अद्भुत माने अलौकिक। तो इसका मतलब नहीं है ये जो वहां जो लीला हो रही है उसको लेकर के आ रहे हैं तो वो अद्भुत नहीं है, उससे भी कुछ और अलग से अद्भुत विहार करूंगा, ये नहीं। वही अलौकिक है जो इस लोक में नहीं है, यही अद्भुत है जो उस लोक में है इस लोक में नहीं है, ऐसे भावों को लेकर के करूंगा। वैकुंठ आद्य जे जे लीला नहीं प्रचार से लीला करीब जाते मोर चमत्कार, हमारा चमत्कार जिसमें होता है जो गोलोक ब्रज में हमारी लीलाओं से, जैसे हम दिन रात चमत्कार हमारा होता है नित्य नवीन रूप में रस निर्जास वहाँ पर आस्वादन करता हूँ, वही सब लीलाएं यहाँ पर। अब थोड़ा सा और एक टीकाकार हैं चैतन्य आधुनिक, उनका नाम क्या, ऐसे बहुत से आजकल ब्रज में या इधर में इन्हीं लोग की बातें सुनते हैं लोग, इनकी टीका थोड़ा सा पढ़ता हूँ, आप लोग समझेंगे जहाँ इसमें क्या चीज, या ऐसे ही कह दूँ। इसमें इन्होंने कहा उल्लैया का अर्थ नहीं लिखा, लैया कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उनके दिमाग में नहीं आया है ना, और ये ब्रज में वहाँ पर कह रहे हैं ये भी उनके दिमाग में नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी अद्भुत लीला करूंगा जो कि यहाँ पर भी नहीं होती, कहाँ बोलो बैकुंठ ब्रज में नहीं होती, उन सब लीलाओं को यहाँ लेकर के अवतर। किंतु भाग्यवशतः लिख दिया शुद्ध भक्त लैया कर्म अवतार, उन शुद्ध भक्तों को लेकर के करेंगे, तो वो शुद्ध भक्त आकर के क्या करेंगे, यदि वहाँ पर वो लीला ही नहीं है तो फिर उनको शिक्षा देंगे जी ऐसा करो तब करेंगे, तो या वही पात्र ही इनको शिक्षा देंगे। वैकुंठ आदि के लिए लिखा, वैकुंठ में द्वारका में अयोध्या में मथुरा में यहाँ तक कि गोलोक के अंतर्गत में ब्रज में गोकुल में कहीं भी जो लीला का प्रचार नहीं है, और सब लीला का अब वही सब लीला यहाँ पर आस्वादन करो, जिससे मुझे चमत्कार हुए जो वहाँ पर भी नहीं मिला, ये अर्थ किया, उल्टा एकदम ठीक। इसलिए गुरु परंपरा से आने वाले महापुरुषों का ही बात ग्रहण करना चाहिए, वही प्रमाण है, ये सब इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे ये प्रमाणित नहीं। किंतु कम बुद्धि वाले जो सद्गुरु का प्रदर्शन है कि इन चीज़ों को समझने इन्हीं को प्रमाणिक मान लेंगे, देखेंगे इसका दाम है 10,000 रुपया इनके संस्करण का, इतना मोटा पहले था 1,000-1,500, आज का जाने कितना है। बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं, विशेष करके ये है ना जहाँ पुस्तकें जो छपती हैं हरिनाम प्रेस, इसी का जूठा खाता है, इसलिए उसके विचार सब गंदे उल्टे थी, जैसा कहा ले लिया। भक्ति विनोद ठाकुर जी नित्य परिकर थे भगवान, उन्होंने इसका जो दिया है मैं जहाँ पर समय आएगा वहाँ पर पढ़ूंगा, या आज ही पढ़ करके बतला देता हूँ। तो इसका ये बैकुंठ में नहीं है। अभी अभी देखिए वहां पर भी ये बतलाया सखा लोग मेरे स्कंध पर चढ़ जाते हैं, किंतु बैकुंठ में और राम जी के पास में या द्वारका में भी कोई ऐसा सखा नहीं है जो कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाए। यहाँ तक कि अर्जुन भी इन लोगों से श्रेष्ठ हैं, वो भी नहीं चढ़ सकते हैं। उद्धव भी सखा है किंतु कृष्ण के कंधे पर चढ़ेंगे नहीं चढ़ सकते। और माता पिता का जहां स्थान है, रामचंद्र जी को उनकी मैया ने बंधन नहीं किया, देवकी भी बंधन नहीं कर सकती, केवल ये वृंदावन में ही होगा। और गोपियां मान करती हैं और कृष्ण को तरह तरह से भर्सना करती हैं, उनके लिए द्वार मना कर देती हैं। ये अयोध्या में भी नहीं है, बैकुंठ में भी नहीं है, द्वारका में भी नहीं है, मथुरा में भी नहीं है। इसलिए बैकुंठ आदि में लीला का प्रचार नहीं है, मतलब जो वहाँ पर भी वृंदावन में भी नहीं है ब्रज में, यह भी बात गलत है। इसलिए वहाँ जो लीला है उसी को लेकर के आते हैं। मैंने कहा वहाँ पर परकिया भाव हो नहीं सकता है, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। अजी जोगमाया के प्रभाव से यदि यशोदा जी को वो रोक सकती हैं जो ये कृष्ण भगवान हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकती। इन्होंने कहा जी कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हैं और लीलाओं के प्रकोष्ठ हैं, तो एक लीला का ऐसा प्रकोष्ठ वहाँ क्यों नहीं हो सकती है। जगह की कमी थी वहाँ, जगह की तो कमी नहीं है, ऐसे ही लीला क्यों नहीं है। खो गोलोक में एक प्रकार की लीला, द्वारका में एक लीला, मथुरा में एक लीला, तो उपपति भाव वाला एक लीला ही क्यों ना रहे। कौजे स्थान की कमी थी इसलिए नहीं रहा, तो यह बात भी ठीक नहीं। प्रचुर स्थान है इसलिए एक प्रकाश में यह भी लीला रहेगी, जरूर रहेगी, नहीं तो जो वहां नहीं है यहाँ पर कभी हो नहीं सकता। मो विषय गोपी गणेर उपपति भावे जोग माया करीब एक आपन प्रभाव, करीब एक माने करेंगी। उन्होंने लिया जब करेंगी तो इसलिए वहां नहीं है, यहाँ पर करेंगी, ये अर्थ लिया। किंतु ये नहीं समझ रहे हैं वहां जो जोग माया ने करती हैं वही जोग माया यहाँ आकर के फिर करेगी, ये अर्थ नहीं उनके दिमाग में घुसा है। इसलिए ऐसा अर्थ लेना वही जोग माया जो वहां पर साधन करती हैं कृष्ण लीला के लिए, वही जोग माया यहाँ आकर के गोपियों का वहां जो उपपति भाव है नित्य विवाह इत्यादि की वहां पर कुछ नहीं है, वही यहाँ पर उनके अभिमान को पति के रूप में उदित करा करके बिना विवाह के भी वो संबंध को पूरा उनके अभिमान को ला देंगे। क्या अभिमान, ये मेरे पति हैं, कृष्ण हमारे उपपति, ये भाव को ला देंगे। आपन अप्रभावे आमी ही ना जानी, अब यहाँ पर आमी ही ना जानी, मैं भी नहीं जानता हूँ, और तहाँ ना जाने गोपीगण, जैसे वहाँ पर मैं भी नहीं जानता हूँ और गोपियाँ भी नहीं जानते हैं जोग माया के प्रभाव से, वो इसी तरह से हम यहाँ पर भी मैं नहीं जानूँगा और गोपियाँ भी नहीं जानेंगी। क्या ये मैं इनकी अपनी लादनी शक्ति है, ये भूल जाएंगे, जो कुछ चाहें ये कर सकती हैं, इस चीज को भूल जाते हैं। कृष्ण भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, इसलिए मैं भी नहीं जानता यहां पर भी कि मैं भगवान हूं, सड़ैश्वर्यशाली अघटन घटन पटियसी शक्ति वाला हूं। जिस समय कृष्ण ब्रज में सो रहे हैं, छोटे से बच्चे हैं, शिशु हैं, नंगते हुए, उस समय करवट बदलने भी नहीं आता, शक्ति नहीं है, सर्वशक्तिमान होकर के भी। तो उसी तरह से यहाँ पर भी वही सब लीलाओं को प्रकाश करेंगे जगत में, किस लिए, प्रेम ने जास आस्वादन करनी है, माता हमको ऐसा स्नेह कर। अभी ठाकुर जी यदि पानी मांगना आरंभ कर दें और रात में यदि 12 बजे रात में बुलाएं जल्दी से पंखा झलो, तो कोई भी पुजारी तैयार नहीं होगा। आज में एक दिन के लिए तो कहते हैं हाँ हाँ हम तैयार है, तैयार है, अब दूसरे दिन फिर कोई नहीं जाएगा, तब ड्यूटी बन जाएगी, जैसे एक घंटे के लिए उनका एक घंटा का, उनका एक घंटा है, उसके बाद में कोई नहीं करेगा। यदि कहेंगे हमको करवट फिरा दो, मिनट मिनट में कोई ना कोई बात कहें, बस उतने में ही जीव उब जाएगा, कोई सेवा नहीं कर सकता। अभी कहेंगे पूरी किया, ये पूरी ठीक नहीं है, ये इसमें कोई टेस्ट नहीं है, फिर से बनाओ, और सब्जी ठीक नहीं हुई, हमारे मैया जैसे बनाती थी वैसा बनाओ, बार 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 नई नई बात करें, बस मन ये कैसे भगवान सेवा ही नहीं कर सके। इसलिए कहा जाए अच्छा तुम अपने अनुसार में अपनी जैसी सेवा करो, उसी समय प्रसन्न हो जाओ। तुहार रूप गुणे दुहार हरे नित्यमान, गोपियों का कुछ गुण है, उनका कुछ गुण है, परस्पर एक दूसरे को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। हरे मन, हरे हरा हरि, हरि हरति मन राधा मन हरति, और हरा कृष्णो मन हरति, ये हो गया हरा। एक तरह से वो हरि हैं, दूसरे तरफ से ये हरा है, एक ही शब्द में तो वो कृष्ण है, वो कृष्णा है, वो आकर्षण करने वाली हैं, तो ये आकर्षक बन जाते हैं, जब वो आकर्षक होती हैं तो ये वैसे बन जाते हैं। इसी तरह से सभी गुण दोनों में हैं, एक दूसरों को आकर्षित करते हैं। धर्म छाड़ी रागे दुहें करे मिलन, धर्म को छोड़ करके अनुराग के द्वारा दोनों मिलते हैं। धर्म छोड़ करने के मैंने क्या, जिस प्रकार से पत्नी पति की सेवा करती है हृदय के अनुराग से नहीं, पिता ने शादी दे दी या जैसे शादी हो गया, विवाह बंधन की मर्यादा की रक्षा के लिए वो होता है, नहीं तो दो तीन दिन में घबरा जाए, फिर सेवाई नहीं कर जाए, आप मेरी सेवा कीजिए, स्त्री का भी तो शरीर है, दिन रात यही सेवा करेगी, इसकी इच्छा नहीं है तो वो भी मेरी सेवा करें, चाहेगी कि नहीं, तो कहेंगे जो मर्यादा टूट गया, स्त्री सब समय सेवा करे, तो इसको कहते हैं धर्म छोड़ना। वहां पर कहते हैं धर्म छोड़ करके पति कहेगा देखो मैं ही परमेश्वर हूं, मेरी सेवा के अतिरिक्त और कुछ मत करना, मैं कहूंगा तो उठो, मैं कहता हूं बैठो तो बैठो, उठो, हमारे आदेश के बिना तुम यदि धर्म करती है तो धर्म कर्म भस्म में घी ढालना है, बेकार हो जाएगा, इसलिए कुछ तुम नहीं कर सकते, हम जिसमें आदेश देते हैं वही करो, मैं ही पति ही परमेश्वर है, वही भगवान है, वही सर्वस्व है। यदि दूसरों की पूजा करती है, कृष्ण की भी पूजा करती है, तो यह धर्म का विरुद्ध। पुराण से कुछ उपाख्यान के द्वारा सुना देंगे, पति की सेवा ही परमेश्वर की सेवा है, ऐसे भी उदाहरण सब दिए गए हैं उन लोगों के। किंतु ये गोपियां क्या करती हैं, चूल्हे में जाए भाण में जाए ऐसा धर्म, और क्या करती हैं, रागे दूहे, कृष्ण भी कहते धर्म चूल्हे में जाए, अदर गोपियां भी दोनों ने मिल करके चूल्हे में दे दिया, प्रयाग में जा करके क्या किया, कुएं में, दोनों में त्रिवेणी ने, त्रिवेणी नहीं कुएं में, प्रयाग में जा करके, और अपना धर्म अपना 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 धर्म, मैंने एक का धर्म है ब्रह्मचर्य, भगवान सब समय ब्रह्मचर्य है, और गोपियां पतिव्रता, कहे दोनों मिलकर के कुएं में डाल दो, तो दोनों मिल करके प्रयाग में यज्ञ होता है ना, स्वाहा स्वाहा उसमें लेकर के कुएं में डाल दिया। इसके बाद में क्या हुआ, इसका फल किस लिए, हम लोग और अधिक तरह से मिले। तो धर्म छाड़, इसका तात्पर्य सीता जी रामचंद्र जी ने दो दो बार छोड़ा, और छोड़ा कैसे, अन्यायपूर्वक, एक बार भी न्याय सीता जी के साथ में नहीं हुआ, और ये न्याय अन्याय का भार किस पर है? धर्म की मर्यादा जो रखने वाले हैं, धर्म के सेतु, मर्यादा के सेतु जो है, ये रामचंद्र। रामचंद्र जी जानते थे जी ये सीता जी के घर में गई, अपवित्र हो गई, जानते थे, बल्कि समस्त देवता लोग आकर के साक्षी दिया और तभी मानते नहीं है। फिर दूसरी बार फिर छोड़ दिया जीवन भर के लिए, उस दिन छोड़ा था और फिर इधर भी, उस दिन कहा जब मर जाओ कोई बात नहीं। उनको राजा तो थे ना, इसमें अनुसंधान करना चाहिए था कि नहीं, विचार करना चाहती चाहिए था कि नहीं? लक्ष्मण जी कहते हैं उनकी बात सुनना तो चाहिए, हनुमान की बात, विभीषण की बात सखा है, सुग्रीव जी से पूछा, किसी से पूछा, एक तरफा ऐलान कर दिया। किंतु किस लिए किया? किस लिए? कहेंगे मेरी धर्म की मर्यादा टूट जाएगी। क्या मर्यादा टूट जाएगी? ये लोग कहेंगे जो अधार्मिक। किंतु सीता जी, इनका कोई ख्याल नहीं किया। एक धोबी का बात ठीक हो गई, किंतु अपनी प्रिया की बात और दशरथ महाराज की बात, वायु की बात, धर्म की बात, ये ठीक नहीं लगी। उन्होंने सीता जी को दूसरी बार घर से विदा कर दिया। किंतु सीता जी ने एक बार भी नहीं कहा कि उन्होंने तो छोड़ दिया, मैं भी इनको आज छोड़ रही हूं। कहा किसी से? कहा वाल्मीकि जी से भी जाकर के नहीं कहा। उनकी रोज पूजा करती हैं, मानस मंदिर में बैठा करके पूजा करती। और वाल्मीकि जी जिस रामायण की रचना की थी उसी को रोज श्रवण करती हैं, मानो कानों में आभूषण है वो, बच्चों को भी वैसे ही शिक्षा देती है। कभी भी राम को सपने में भी नहीं छोड़ा और उसको इन्होंने छोड़ दिया। किंतु ऐसे धर्म की मर्यादा को भी वही राम रूपी कृष्ण अब जब हुए एकदम छोड़ दिया धर्म की मर्यादा। इस लीला में क्या करेंगे? वहां पर थे धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम और यहाँ पर प्रेम लीला पुरुषोत्तम, उन्होंने उसको रख दिया। और सीता जी जैसे जिस प्रकार से यहाँ मर्यादा की रक्षा की, और राधा जी क्या करती हैं, तोड़ मोड़ करके फेंक दिया, अभिमन्यु की तरफ नहीं देखा, सास की बात नहीं, गुरुजनों की बात नहीं, अनुराग से दोनों मिलते हैं, छिप करके डूब करके जैसे भी, कभी मिले कभी ना मिले, कभी मिलते हैं और कभी नहीं मिलते। दैवेर घटन मैंने यहाँ पर जोग माया जी का घटन, जोग में ऐसी परिस्थितियां बनाती हैं, मिले 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 मिले, अरे बस झट आ गया, नहीं मिल सके। एक आदमी रंथी देव, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, देश में अकाल आया, अपने घर का जो कुछ था अन्न सब लोगों को दे दिया, बांट दिया, जब कुछ नहीं रहा तो खजाना खोल दिया, जहां से अन्न मिला सब ले आ करके प्रजाओं को सब बांट करके जो कुछ होता थोड़ा सा ग्राम का, जब खजाना भी खाली हो गया, अन्न भी खाली हो गया, तो देश को छोड़ करके अपने बच्चों के साथ नहीं चल, थोड़ा सा सत्तू कहीं रास्ते में मिला, बच्चे भूखे हैं वो भूखे हैं, देश की सीमा पर जाकर के सत्तू को पानी में भी जाया, और जब वो ठीक ठाक हो गया तो अपने बच्चों को देने वाले थे पहले, दे करके तब फिर खाएंगे। इतने में रोता हुआ एक कुत्ता लेते हुए एक कोई पहले मैंने चमार मोची इस जाति का कोई बहेलिया व्याधा है, महाराज मैं मरा 7 दिनों से हम भूखे हैं, आज तो हमारा प्राण निकल जाए, हमारा कुत्ता भी मरा और मैं भी मरा, आपकी दुहाई है आप हमको कुछ खिलाइए, आधा बांट विभाग करके और उसको ज्यों वो जाता है तो ही दूसरा कोई आ जाता है, मैं मरा 10 दिन से नहीं खाया, आप मेरी रक्षा। अब वो आधा का आधा भी वो उन्होंने उसको दे दिया। इतने में कोई और आया और वो डकर करके रो करके मूर्छित हो गया, जो रहा सहा पानी उसको भी पिला दिया, वो भी नहीं रहा, थोड़ा सा एक ग्रास था और वही बच्चे को देना चाहते थे, इतने में फिर वैसा पूछा उसको भी दे दिया। जब ही उठाने के लिए चेष्टा करते, अभी अभी खाया क्या, अब नहीं खा सकते। इसी को कहते हैं दैव, दैवेर घटन। वैसे ही सब ठीक है हुआ, ललिता विशाखा इत्यादि सब भंडित वन में है, और उसी समय में अब राधा कृष्ण आने वाले हैं, दोनों में मिलन होने वाला है, और इतने में पद्मा के कहने से झट वहां पर जटला उपस्थित। जब ही एक कुंज में अभी मिलने वाले हैं, इतने में वो आकर के, अरे ये क्या, अरे क्या, और राधा जी का हाथ पकड़ लिया। जब राधा जी का हाथ पकड़ लिया, कहा बोले जैसे तुमको, तुम रोज हमको झूठी बनाती है, आज देखो तो तुमको पकड़ लिया। इतने में मधुमंगल आकर के उसके कपड़े खींच लिए, जब कपड़ा खींच लिया तो देखा क्या, अरे ये तो सुबल राधा जी बना हुआ है, ये खेल कर रहे हैं। एक मिनट में जोग माया के द्वारा या ऐसे ही उस लीला को एकदम बदल दिया। आप जितनी सखा इत्यादि जोग माया पूर्णिमा जी को साथ ले आई थी और मुखरा जी को, सभी लोग हंसने लगे, अरे ये देखो तो ऐसे ही रोज अपने बहू को झूठ मुटका ये करती है, तंग करती है। लीला का भाव ही बदल गया। वो जो मिलन था वो राधा जी को, भाग करके चली गई, इधर कृष्ण भी ऐसे हो गया, अब मिलने वाला था बस झट एकदम मिलित होने से पहले ऐसे ही वृंदावन में रासलीला के पश्चात मिलन का सौभाग्य होता। अक्रूर गए, अक्रूर कृष्ण को बलदेव जी को लेकर के एकदम चले गए, वहां से फिर लेकर के चले गए द्वारका, फिर मिलन नहीं हुआ। ये घटना कैसी है, कृष्ण कहते हैं ये बाढ़ की भांति, बाढ़ का पानी एक जगह का मट्टी काट करके फिर दूसरी जगह में टापू बना देता है, और फिर उसको काट करके अलग कर देता है, कहाँ कहाँ के बालू के कण एक जगह मिल करके जमीन बनता है, और जमीन को काट करके एक एक जगह बालू न जाने कहाँ चला जाता है। पंचशाला में बहुत से लोग मिलते हैं, और समय पूरा होने पर दूसरे दिन सवेरे होने के बाद में देखा पंचशाला खाली, अपने अपने कार्यों में सब चले जाते। अभी हम लोग एकत्र हैं यहाँ पर काल के वजह से, एक काल आया जैसे एक आदमी भी एक आदमी से ये नहीं रहेगा मिलने वाला। हम लोग बचपन में जिन बच्चों के साथ में खेले कूदे पढ़े लिखे, जिन परिवार के साथ में रहे, एक भी व्यक्ति कोई है कहाँ है। इसलिए कहते हैं काले मित्र अकाले अपार, एक कहाँ एक कहाँ, मिलन नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि ये सब दैव की घटना से कृष्ण और गोपियां भी नहीं मिल सकी, गोपियों को सांत्वना दिया था ऐसे ही, इसमें किसी का करने का नहीं है, ये तो दैव की इच्छा से मिलना। और किस लिए, प्रेम रस की परिपाटी में जो रस का निर्जास है उसका आसादन करने के लिए। निर्जास किसको कहते हैं, एक गन्ना ले लीजिए या वो कौन सा आम होता है पीला पीला लंबा लंबा मुंबई का दशहरा आम, दशहरिया, एकदम पेड़ से लगा हुआ आम था, पक गया पेड़ में, और एक कोकिल बैठी उसके हिलने से या एक हवा के झोंके से वो आम नीचे गिर गया, वो कैसा मीठा होगा ने? उसको दे दो किसी को खाने के लिए, खा खा करके पहले तो रस पूरा ले लेगा, फिर उसके छिलके में जो होगा उसको भी चबा लेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, अंत में जो गुठली है चाट चूट करके, जीभ से चाट चूट करके एकदम यह रस निकला, अंत तक नहीं छोड़ना। वैसे ही ब्रज रस का निर्जास कृष्ण ग्रहण करते, कैसे, दो पहलू, मिलन और विप्रलंब भाव, वियोग, मिलन और वियोग। यदि आम को ऐसे ऐसे कर करके और रस ले तो ये किए, और जब सब चाट चूट लिया केवल गुठली बची है चाट रहे हैं, तो उसको समझे अब रस नहीं है, उसमें से रस नहीं दिया। मिलन में जो आनंद है और फिर विरह में, वियोग में जो उनकी चिंता जनित आनंद है वो एक मिलन में, उस समय में ऊपर से सब कुछ भूल जाते हैं, याद नहीं रहता ऊपर से मिलने में, भीतर की स्मृति नहीं रहती, और ऊपर में नहीं मिलने से भीतर में उसकी सारी स्मृतियां बचपन से अभी तक जो हमारा मिलन जब हुआ है वो सब याद आएंगे और रोएंगे। भीतर में मिल रहे हैं और ऊपर में आइए ऐसे थे, ऐसा लड़का था, इस रूप में हम लोगों का मिलन हुआ। आदमी किसी के मरने पर क्यों रोता है? जितना ही उसकी गुनावलियां हैं, जितनी उनकी बातें हैं, वो हमारे हृदय में आती हैं और रहा नहीं जाता, रोते हैं। भीतर से याद आती जाएगी, ऊपर से रोते हैं। ये दो प्रकार का मिलन और पियो, दोनों रसों का आस्वादन कृष्ण करते हैं और गोपियां करती हैं। यही सब रस निर्जास करीब आस्वाद, कृष्ण को ये सब चिंताएं कैसी हुई, इनको ऐसा करने की इच्छा कैसे पैदा हुई? एक आदमी ने कभी दशहरी आम खाया तो उसको याद आएगी, किसी आम को साधारण आम को भी देकर के याद आएगी कि हमने वो जो दशहरी आम खाया था इतना मीठा, तब तो याद आएगा, अनुभूति होगी। जिसने कभी आम ही नहीं खाया उसको स्मृति आएगी? तो कृष्ण ने कभी आस्वादन ही नहीं किया गोलोक वृंदावन में, तो उनको ये स्मृति कहाँ से आई? आएगी नहीं आएगी। इसलिए इसे मालूम होता है कि वहाँ पर आस्वादन ये जरूर किया है, इसलिए अब इसी को इस जगत में उतर करके आस्वादन करना चाहते। कभी हम लोग जाते हैं बाहर में पिकनिक करने, पिकनिक माने क्या, घर में रसोई बनती है, अब वहाँ पर जा करके कोई स्पेशल तरह की रसोई बनती है। यदि वो बनाया हमने वो क्या चूरमा, चूरमा बना दाल, दाल बाटी और चूरमा के लड्डू बनाए, और वो किसी कारण से वो ठीक नहीं बन सका, जल गया, कहते आज खराब हो गया। क्यों कहते हैं जो खराब हो गया? पहले अच्छा खाया है ना इसलिए। और यदि पहली जीवन में पहली बार हम जला हुआ खाएंगे, बहुत बहुत सुंदर, हाँ क्या कहना। इसलिए ऐसा समझो कृष्ण को याद आ रही है, ऐसा जो हमने रसास्वादन के ठीक ऐसे ही जगत में जा करके ऐसा करेंगे, जैसे यहाँ पर हम चमत्कित हो गए ऐसा ही हम यहाँ पर चमत्कित हो जाएंगे। यही सब रस निर्जास करी बास, यही सब कौन सब,
जो पहला स्वादन कर चुके हैं,
यही सब माने ये कहाँ है वहाँ आस्वादन कर चुके हैं। कृष्ण कहते हैं गोपियों को, गोपियां संदेश देती हैं, अपिवत मध पूर्जा आर्य पुत्र उधुनास्ते स्मरति सपे पितृ गेहान बंधु समश्च गोपान सकृत। इसके बाद में है क्या हमको कभी वो स्मरण करती हैं, हमारे कृत्यों को स्मरण करती हैं? इसके बाद आ कृष्ण क्या पढ़ने के लिए गए थे वहां से आगे, अब ये वृंदावन में आ रहे हैं, अपि स्मरत की अपि बता मधुपुरी क्या, कृष्ण क्या मधुरापुरी में पढ़ लिख करके आ गए हैं गुरुकुल से, पिताजी बड़े उनके निष्ठुर हैं पढ़ने के लिए भेज आ गए, क्या यहाँ आ रहे हैं? ब्रह्म से पूछ रहे हैं अपवत मधुपूर्जा आज पुत्रो धुनास्ते स्मृति से पितृ गेहान बंधु बंधुश्च गोपान, क्या अपने बंधु सखाओं को याद करते हैं? और कभी याद हम लोगों के भी करते हैं कैसे? आज जो ये तुम लोगों ने फूल का जो हार बनाया उतना अच्छा नहीं है, बेकार का, अरे गोपियां कैसी सुंदर बनाती थी इस रूप में, अथवा ये जो रसोई बनी वाह कमाल तुमने कर दिया, गोपियां ऐसी रसोई नहीं बनाती थी, इस रूप में भी मेरी निंदा करते हैं, भी स्मरण करते हैं, किसी रूप में स्मरण करते हैं। गड़बड़ी के रूप में तो स्मरण करने की बात ही नहीं, गोपियों का सब कुछ अच्छा है, सभी कुछ अच्छा है इन लोगों से। तो अभी पूछ रहे हैं, हम उनके सुगंध से भरपूर, उनकी स्वाभाविक जो सुंदर सुंदर गोल सुशीतल सर्प की भांति सुंदर और मधुर और सुडोल तहिए ठंडी ऐसी भुजाओं को कहो हमारे सिर पर रखेंगे, कभी सांत्वना देंगे, नहीं नहीं अब मैं आ गया। इस तरह से कहते हैं ये सब रस निर्जास, ये वियोग में अमिलन का अलग से, यही सब द्वारे करीब सब भक्ते रे प्रसाद, और उसका प्रसाद थोड़ा थोड़ा बांट दूंगा। क्या प्रसाद बांटूंगा? ये लोग ऐसी मेरी क्षमाएं होती हैं, मैं भक्तों को इतना प्यार करता हूं, मैं उनके अधीन हो जाता हूं। ये सब लीलाओं के द्वारा जगत के लोगों को थोड़ा सा भी लोभ हो जाएगा, जिनको लोभ होगा कोटि कोटि लोगों में दो एक लोगों को, मैं समझू हमारी लीला करना है यहां पर जगत में, सबको नहीं होगा। अभी हम लोग सब सुन रहे हैं, सबको नहीं होगा, कुछ लोगों को लोभ होगा, लोभ होने पर भी फिर उनका लोभ गड़बड़ हो सकता है। और जिनको प्रकृति